दिन के गुणों के ज्ञान में फिर वर्धमान महान दिन पिछड़े हमारे प्रतिसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार 63वीं और 66वीं गाथा चलेगी। गाथाएं पढ़ो।
पप्पा इत्थे विषये वासे समस्ति देशः वीण परिणमाणो अप्पा सैमे विसुहम्नः वदी देहो एगन्तेण हि देहो सुहम् न देहेस्य कुण दिशगेवा दिशय वसेण दुःसोक्तम् दुःखं बहव दिशय माद इन्द्रिय विषय को प्राप्ति करिय जीव स्वयं स्वभाविषे सुख रूप हो पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं स्वर्ग में भी नियम से सुख नहीं देह जीव बस स्वयं सुख दुख रूप हो।
इन गाथाओं की उत्थानिका में यह लिखा है, इन गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमरचंद लिखते हैं कि सिद्ध जीव ही सुखी हैं, यह समझाने के लिए दृढ़ता पूर्वक यह कहते हैं कि शरीर सुख का साधन नहीं है। कैसी विचित्र बात है, गाथा में सिद्ध भगवान के सुख की कोई चर्चा नहीं, उत्थानिका में ये कह रहे हैं कि सिद्धों के जो सुख है वे पूरी तरह सुखी हैं, और आप कह सकते हो कि उनके शरीर तो है ही नहीं, ये सुखी कैसे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा मान रखा है कि शरीर होता है तो शरीर में तकलीफ होती है, तो शरीर को सब तरह की अनुकूलता मिलती है तो शरीर में आराम होता है, तो सुख दुख शरीर के बिना संभव नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो उनके सुख भी नहीं होगा, और इस समस्या का उन्हें समाधान करना, ऐसा अमरचंद आचार्य कहते हैं। लेकिन उन गाथाओं में हम पढ़ते देखते हैं कि इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। अब सिद्ध भगवान की कोई बात नहीं है ना, तो स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं दे, यह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप, बिल्कुल चर्चा नहीं है सिद्ध की। अब उत्थानिका में ये निकाल रहे हैं कि क्योंकि पीछे की गाथाओं में ये कह के आए हैं कि संसार में सुख है ही नहीं, पंचमात्र भी चक्रवर्ती भी इंद्र भी स्वधर्म भी कितने कितने जोरदार तरीके से उनका खंडन किया था, और फिर अभी हाथ की स्याही भी नहीं सूखी, और 63-64 गाथा में ये बात कही, और 65-66 में कहने लगे कि संसारी जीवों को जो सुख होता है वो इंद्रियों से नहीं होता है, स्वयं स्वभाव से ही होता है। संसारी जीवों को जो सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं कर रहा, संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख होता है, तो अभी परोक्ष ज्ञानियों को सुख नाम कोई चीज होती नहीं, तो जिसे अब वे सुखी कहते हैं वो चीज उनके नहीं है सिद्ध भगवान के, तो अभी वे सुखी हैं ये बताना है उन्हें, तो यहाँ सुख उनको सुख दुख, उनको सुख दुख उनके पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, ऐसा कह रहे। अभी सुबह तक तो ये कह रहे थे कि उनके सुख है ही नहीं, रंच मात्र भी, दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। अपन वही सुख मानते हैं जो विषय में व्यापार होता है, ये उनको सुख की प्राप्ति हुई, और वे कहते हैं वो तो दुख की निशानी है। फिर इसमें ऐसा कहते हैं कि संसारी जीवों को जो सुख दुख होता है वो शरीर के कारण नहीं होता है, उनकी स्वयं आत्मा के कारण होता है। गाथाओं में ऐसा कहते हैं, देखो दो बातें, कि इंद्रिय विषय को प्राप्त करे जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो। देखो यहां रुको, गद्य गद्य जैसा पढ़ो, पद्य छोड़ दो। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, मिल गया ना, कि इंद्रिय विषयों को छोड़ दो, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके ये जब जीव सुखी होता है तो उन इंद्रियों के विषयों से नहीं होता है, अपने स्वभाव से ही सुखी होता है, ये कहना चाहते हैं। है? पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं, ठीक है, उनकी भी देह तो सुख रूप होते हैं लेकिन उनका शरीर सुख रूप नहीं होता, माने शरीर सुखी नहीं होता, शरीर तो पुद्गल है और उसमें सुख दुख का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए वो शरीर सुख रूप नहीं होता। उन्हें जो सुख दिखाई देता है लौकिक अनुकूलता में, वो उनके स्वयं के स्वभाव से ही उन्हें दिखाई देता है। सुबह गुरुदेव के प्रचनों में भी आजकल ये विषय आ रहा है कि यदि इस विकार को हम स्वयं विभाव स्वभाव के कारण होता है ऐसा नहीं माने तो पूरी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। सार सुबह गुरुदेव भी यही कह रहे थे, गुरुदेव के में था, हाँ गुरुदेव के में था, कि जीव की स्वतंत्रता बताते हैं, ऐसा कह रहे थे और वे दुख की बात कर रहे थे कि वो दुखी है, रागी देसी है, और वो स्वतंत्र रूप से रागी देसी है, और उसका रागी देसी होना स्वभाव है, अपने स्वभाव की वजह से वो रागी देसी है, और इससे आत्मा की स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं, ऐसी कोई बात कर रहे थे। क्योंकि यदि हम उसको पर के कारण मान लें दुख है, तो पराधीनता हो जाएगी, और जब पराधीनता हो जाएगी तो हम पर के कारण दुखी हैं, तो हमें सुखी होने के लिए पर के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भैया तुम छोड़ दे, हमारे लिए सुखी हो जाने दे। तो जब दुखी होंगे उससे तो लोग सुखी भी उसी के सहयोग से होंगे, इसलिए ये गुरुदेव भी यही बता रहे थे कि शाम के प्रकरण में भी यही बात है। जो ऊपर तो बहुत है स्पष्ट शब्दों में, यह समझाने के लिए क्या सिद्ध जीव ही सुखी हैं, यह समझाने के लिए दृढ़ता पूर्वक यह कहते हैं कि शरीर सुख का साधन नहीं है। शरीर सुख का साधन नहीं है ये कही, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, तो कोई ये ना समझ ले कि सिद्ध भगवान सुखी नहीं है, क्योंकि शरीर से कोई सुखी नहीं होता, सब अपने स्वभाव से ही सुखी होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो शरीर के कारण सुखी है ही नहीं, लेकिन अनंत भगवान भी मेरी शरीर के कारण सुखी नहीं है, है ना, सुखी, और स्वर्ग के देवता भी वे भी जो सुखी हैं, ये लौकिक अनुकूलता रूप सुख है, वो तो अतीन्द्रियानंद की बात थी ऊपर, तो ये भी देह के कारण नहीं है ये कह रहे। देखो इंद्रिय विषय को प्राप्त करे है जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर शरीर तो सुख रूप होता ही नहीं, और स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को, यह शरीर उस शरीर ध्यान करने वाले स्वर्ग के देवताओं को सुख नहीं देता है, वो जो होते हैं तो स्वयं सुख दुख रूप स्वयं के कारण ही होते हैं। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में जो लौकिक अनुकूलता है शरीरादिक की, उसकी वजह से वे सुखी नहीं है। अब मनुष्य गति में यदि शरीर की प्रतिकूलता भी है, और कोई पंचम गुण स्थान वाला है, छठवें गुण स्थान वाला है, तो वो सुखी है, फिर शरीर की 50 बीमारियां होने के बाद भी, और वो स्वर्ग का देवता है, शरीर की सब प्रकार की अनुकूलता है, और 5 इंद्रियों के भोगों के विषयों की भी सर्व प्रकार से अनुकूलता है, और फिर भी वो सुखी नहीं है, माने अतीन्द्रिय आनंद की उसे प्राप्ति नहीं है। है तो उस सीमा के ऊपर, जैसा अतीन्द्रिय भगवान को है आनंद सुख केवली को, वैसा सुख नहीं है, इसलिए भी उसे हम दुखी कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं, अकेले सिद्ध भगवान ही देह की वजह से सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि देह नहीं है उनके। यदि देह की वजह से सुखी होते मानेंगे तो सिद्ध भगवान को हमें सुखी नहीं मान सकते हैं। तो कहते फिर ठीक है कि जिनके देह है उनको तो देह के कारण सुखी मानो, सुखी दुखी दोनों ही। तो वो कहते कि उनको भी देह के कारण कोई सुखी दुखी नहीं माना जा सकता। एक आदमी एकदम काला का लूटा है और बहुत खुश रहता है, नेमिना स्वयं सांवले थे, है ना, सांवलिया पारसनाथ, पारसनाथ भी सांवले थे, और उस सांवले रंग के कारण उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि किसी देह वाले के भी देह के कारण सुख दुख नहीं है, क्योंकि यदि देह के कारण सुख दुख हो तो हम देह की सेवा में लग जाओ, तो देह को ठीक रखो। फिर वो आ जाता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, फिर व्यायाम करो, फिर प्राणायाम करो, फिर होते होते वो इतना बढ़ जाता है कि सुबह से शाम तक उसी में लगे रहो, रामदेव बाबा जैसे। क्या शरीर सुख का कारण है, शरीर का स्वस्थ रहना ये ठीक है, अब उसका फिर हद तो है नहीं। तो सच्ची बात तो ये है कि शरीर के सुख दुख से आत्मा के सुखी दुखी होने का कोई दूर का भी संबंध नहीं है, और इसका तो जो स्वरूप है, जिस पर्याय में जैसी अवस्था जिसकी होनी है वो होती है, तो सबकी तो एक सीनी होती है ना। तो कहते हैं कि फिर थोड़े अपन उधर आ जाओ, फिर मध्य पर्याय पर, कि हरेक की नक्ति है कि किसकी कैसी शरीर की भी अवस्था होनी है, मतलब वो भी हमारे करने से कुछ नहीं होना उसमें। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है कि बराबर ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का, फिर घूमने जाओ, व्यायाम करो, और अकेला ऐसा ही नहीं है कि हम केवल उपदेश देते हैं, खुद भी ऐसा ही मानते हैं बहुत कुछ अंदर से, और घूमने जाते भी हैं तकलीफ पा करके भी, क्यों, और सब खान पान में भी बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी अनुकूलता बनी रहे, फिर भी कहां बनी रहती है, मतलब वो तो जैसी बननी है वैसी ही बनेगी, फिर भी जिसको सुखी देह की तरफ से भी सुखी रहना है उसको निश्चित रूप से संयम के साथ और ऐसी चीजों के साथ ही रहने का भाव आता है कि जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। तो उनका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसको शरीर को बीमार पड़ना है उसकी बुद्धि ऐसी होगी, आलस से होगी और कारणों से होगी, और कभी इससे भी हो सकती है उपेक्षा कि क्रमबद्ध में जो होना होगा सो हो जाएगा, हम कहां तक इस संयम संयम के चक्कर में रहे। बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर कहता है कि तुम घी तेल मत खाओ, कभी भी मर सकते हो, हार्ट के पेशेंट हो, ये बिल्कुल जहर है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता। मैं ऐसा कहता हूं उन लोगों को कि अपने शास्त्रों में एक अनिष्ट नाम का अभक्ष होता है, मुझे जानते हो ना, पढ़ा होगा ना तुमने, तो जो बिल्कुल शुद्ध हो उसमें कोई अशुद्धि नहीं, खाने के हिसाब से मुनि महाराज को भी आहार में दे सकते हैं, फिर भी यदि वो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़ता है, हमें उससे एलर्जी है, तो वो हमारे लिए अभक्ष है। अब वो जो घी तेल है उसके लिए वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत घातक है, तो फिर वो कहता है हम की परवाह नहीं करते, जब मरना हो तो मरना है, एक दिन तो मरना ही है, हम तो पाएंगे। तो वो अनंत राग है उसे, उससे वो मौत की कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता। वो ये नहीं समझे कि मैं बहुत इसके प्रति उदास हो गया शरीर के प्रति, और इसलिए मैं बहुत महान हो गया, और जो शरीर की चिंता करते हैं तो परहेज से रहते हैं, ये शरीर के प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं है। वो पांच इंद्रियों के विषयों का इतना प्रेमी है कि उसके पीछे मरण जान करके भी उस विषय को नहीं छोड़ सकता, वो अनंत दुखी है क्या? वो बात भी सही है कि जिसको जैसे होना है उसको वैसी ही बुद्धि होती है। एक भाई थे हमारे, रिश्तेदार ही थे दूर के, बहुत क्रियाकांडी, बहुत मतलब मुनि महाराज से भी ज्यादा वो शुद्धि का ध्यान रखते थे, खाने में पीने में इसमें इसमें, और उन्हें अमरूद, अमरूद होता ना, अमरूद समझते हैं नहीं, जामफल क्या बोलते हो तुम लोग, वो अमरूद खाने से एलर्जी होती थी, सारा शरीर फूल जाता था बहुत ज्यादा। तो जब अमरूद का मौसम आता था और बाजार में सब्जी लेने जाते थे तो वहां बढ़िया बढ़िया रखे हुए अमरूद देखते थे, तो उनको खरीद के लेके आते थे और खाते थे, जो होगा सो देख ही जाएंगे, हैं? मरेंगे तो मर जाएंगे, एक दिन तो मरना ही है, ऐसी बातें करते थे, और उन्हें खाते थे वो फूल जाते थे। हमने उन्हें बहुत समझाता था कि नहीं, ये आप ये समझ रहे हो कि आपने बहुत जो वीरता है, कि बहुत आपका जो त्याग है कि हमने परवाह नहीं करी बीमारी की, लेकिन तुमने अपने विषय की लोलपता में परवाह नहीं करी, लेकिन ये तुम्हारे जाने दो विषय की लोलुपता की बात, लेकिन धर्म के हिसाब से भी ये अनिष्ट नाम का अभक्ष है, और तुम अभी अभक्ष के भी त्यागी नहीं हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं चार अभक्ष का छोड़ दिया, जो छूटते हैं तो सब एक साथ छूटते हैं। ये बात भी मैं आपसे अच्छे कह देना चाहता हूं, वैसे हमेशा भी कहता रहा हूं, हमारे यहां संयम जो आता है ना, वो एक स्टेजेज बने हुए हैं उसके, कभी चौथे गुण स्थान में उसको इतनी चीजों का त्याग होना चाहिए, फिर पंचम गुण स्थान में पहली प्रतिमा में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, पांचवी में इतना, सातवीं में इतना, दसवीं में इतना, ग्यारहवीं, तो ऐसा नहीं होता। एक ग्यारहवीं प्रतिमा में जिसके छोड़ने की बात है तुम तो उसे पहली में छोड़ दो, वो वैसा ही अनर्थ है। माने आप जो शास्त्र की मर्यादा है उसके हिसाब से क्यों नहीं करना चाहते? आपको वो चीज तो अच्छी लगती है जो तुम्हारे पद में छोड़ी जाती है, हर तुम्हारी पहली प्रतिमा है तो उसमें छोड़ी, वो तुम्हें छूटती नहीं है, और वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दी। माने उसमें शास्त्र में नियम है ना, जैसे एक सामान्य श्रावक है तो सामान्य श्रावक को अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए और सात वसन का त्यागी होना चाहिए, और ये तो हमारे लिए अनिवार्य है, और बाकी कोई चीज अनिवार्य नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम और भी त्याग कर दें तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक चीज तो दसवीं प्रतिमा में होता है वो उसकी करें, और एक चीज बिल्कुल जो पहली प्रतिमा में अभक्ष भी है तो अभक्ष का ही खाना खा रहे हैं, तो आपको कौन खा रहा है उसका? मैं कहता हूं कौन नहीं खा रहा, मैं उन सब वृत्तियों को चैलेंज कर रहा हूं। सब हार्ट के पेशेंट हैं, सबको घी तेल जहर है, और वो अनिष्ट नाम का अभक्ष है, कौन ने किसने छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, हम 12 महीने नहीं खाते हैं, रूखी रोटी खाते हैं, अब एक आध दिन चलता है, एक आध दिन चलता है, मैंने कभी कोई पूड़ी होते हैं, मेहमानी में जाते हैं, ऐसा होता है, होली दिवाली अपने घर में बनती है, तो इसी को तो भ्रष्टता कहते हैं। ऐसा तुम करो ना, आलू के बारे में भी ऐसा ही करो, کہ جب مہمانی میں جاؤ تب کھا لیا کرنا اور ویسے بارہ مسی نہیں کھانا, تو اسے آپ کو آلو کا تیاگ کہیں گے؟ ایک بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو جس بھومکا میں کھانے لائق نہیں ہے اسے مر جائے تو بھی نہیں کھانا, ایسا ہونا چاہیے. اب وہ تو مر جائے تو بھی کھانا, میں تو کھاؤں گا چاہے مر جاؤں. میرے سے تو گھی تیل چھوڑا نہیں جاتا, میرے سے تو اس کے بنا یہ نہیں ہوتا, میرے سے تو یہ نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا. تو بالکل ویسی بات ہو گئی نا. مانے ہماری جو سیدھی مریادا ہے اس میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہم کا اس کا تیاگ ہماری ہے تو وہ ہونا چاہیے. اب اس لیے انہیں پتہ نہیں چلتا ہے. اب گرست ہے, ساتویں پرتما نہیں ہے, اب ابھی چھٹویں بھی نہیں ہے, دوسری تیسری بھی نہیں ہے, ابھی برہمچری پرتما تو ہے ہی نہیں, برہمچریانو ورت بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں, یدی ہے تو پھر پانچ انوت لے لینا, تو دوسری پرتما لیتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں شانتی جی ہے کہ نہیں ہے آپ کو بتاؤ, ساتھ بھی حساب نہیں ہے, اور پھر برہمچاری لکھنے کا شوق کیوں ہے؟ پھر برہمچاری ورت لینے کا شوق کیوں ہے؟ پھر لینا تو میں ایک دفعہ مان بھی سکتا ہوں, اس لیے کہ ہم جگت کے سامنے گھوشنا کر دیں تو جو ورت میں روزانہ اپنے شادی کا پرستاؤ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں وہ آنا بند کر دیں, کوئی ہمیں اس نگاہ سے نہ دیکھے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. کیوں, نئی عمر ہو, شادی کے لائق عمر ہو, سوستھ ہو, بڑھیا سب کام کرتے ہو, تو ہر آدمی آئے گا, لڑکی والے آئیں گے. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آئے تو آپ گھوشت کر دیں کہ میں تو برہمچاری ہوں, لے لیا میں نے, مجھے نہیں کہنا, تو کوئی بات نہیں. اور آپ اس کے لیے کہ میں پورا ڈھنگ سے پڑھ سکوں, سوادھیائے کر سکوں, اور اس کے لیے آپ مجھے سمے چاہیے, اور یدی شادی ہوگی تو ہزار جھنجٹیں کھڑی ہوں گی تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا, سوادھیائے نہیں کر پاؤں گا, اس لیے لے لیں تو اس کے بھی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن لینے کی دقت نہیں ہے, تو برہمچاری لکھنے کی دقت تو ہے. کیوں ہو تو تم سامان نہیں گرست, ان سے کسی بھی پرکار تو انتر نہیں ہے. پر ایک بھی بات, جو سامان گرست ہیں, دھوتی کرتا پہنتے ہیں, ٹوپی لگاتے ہیں, پنڈت بنسی دھر جی تھے اندور کے نیا الکار, یہ سب ساتویں پرتمان دھاری تھے, اور دھوتی کرتا پہنتے تھے, پگڑی باندھتے تھے, ٹوپی لگاتے تھے. ہمارے گرو جی مکھن لال جی تھے, دوسری پرتما دھاری تھے, اور یہ سب پہنتے تھے. من پہننے کا نیم ہی نہیں ہے, نیم ہے پھر آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ سماج میں ایک واتاورن ہے کہ یدی کوئی برہمچاری ہے اور وہ گھر چھوڑ کر پوری آتم سادھنا میں لگا ہوا ہے تو وہ سماج ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے پالن پوشن کی ذمہ داری ہماری ہے, تو سب اسے بھوجن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں, اس کی سب سویدھائیں کی چیزیں اسے جٹاتے ہیں, سامان دیتے ہیں, پہننے اوڑھنے کے کپڑے بھی دیتے ہیں, کہیں جانا ہو شکر سمیت کی یاترا وغیرہ میں تو ٹکٹ کا پیسہ بھی دیتے ہیں. تو سب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ سماج ایسا کرتی ہے, اس کے لیے میں سماج کی بہت پرشنسا کرتا ہوں. وہ اس سماج ایسی گنگراہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس ویکتی کو جب وہ اس پد کے لائق ہے ہی نہیں تو اسے نہ کیول بنا کر کھانا چاہیے, کما کے کھانا چاہیے. اور وہ صرف ویش اس لیے دھارن کرتا ہے کہ سماج میری ذمہ داری اٹھائے, اور پھر ایسا کرتا بھی ہے, سماج کی یہ ڈیوٹی ہے, سماج نے یہ نہیں کیا, ہم یہاں بیٹھے رہے مندر میں, ہم ہوں کے بیٹھے رہے وہاں, جو کوئی نے پوچھا ہی نہیں. پھر وہ جو کرتا ہے نا, और अपनी उसने घर की व्यवस्था ही खंडित कर दी, चूल्हा ही नहीं रखा, रोटी बनाएगा कैसे? इसका मतलब वो दूसरों पे ही निर्भर हो गया पूरी तरह। दसवीं प्रतिमा में ये लिखा है कि घर में रहे सब छोड़ देवे, और घर वाले जब निमंत्रण देने आए तो घर वालों के यहां भी खाने तब जाए, बिना निमंत्रण के उनके यहां भी नहीं जाए, और निमंत्रण के लिए कोई इशारा नहीं करे। छुल्लक अहिलक और जो भी है ना मुनिराज, वो तो ऐसे जा सकते हैं, जो इस बात का निशानी है कि हम आहार को निकले हैं, लेकिन उसके नीचे वाले नहीं कर सकते। अब सोनिया तो वो एक ये दिखाना चाहता है ना कि तुम मुझे ले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे को ले जाना, नहीं तो तुम वो जिस जगह बदनाम ही करता है वहां के लोग ऐसे हैं, उन्हें किसी को पूछे ही नहीं कि हम ब्रह्मचारी में भूखे बैठे रहे। लेकिन तेरे कुल ही प्रतिमा है कि कोई प्रतिमा नहीं है, तो ये तो दसवीं प्रतिमा तक तेरे को घर में आरंभ त्याग परिग्रह त्याग में रहने का अनुमति का त्याग कर दिया तूने, लेकिन घर में रहे उद्दिष्ट त्याग में फिर जाकर के फिर घर छोड़ने की बात है। उसके पहले तुम साहब हमारे यहां तो भेष दूसरा है ही नहीं कोई, एक मुनि का है, एक आदिका का है, और एक उत्कृष्ट श्रावक का है, छुल्लक अहिलक का, तो हम फिर कोई भी देश पहने, देश तो कोई नक्की नहीं है ना, फिर तो हम आजाद है ना कि मैं पूरा पहन सकता हूं, यानी मैं धोती कुर्ता पहन सकता हूं, इसके लिए मैं और तुम दोनों आजाद हैं, लेकिन मैं चदरा ओढ़ सकता हूं इसके लिए भी तो मैं आजाद हूं, क्योंकि ये भी तो हमारे यहां कोई देश नहीं है, समझना शांति जी मैं क्या कह रहा हूं, वो भी तो हमारे यहां देश नहीं है ना, वहां नग्न निगम्बर वेश है, ये कारिका का है, इलेक्ट्रिका वो वेश ही नहीं है, तो तुम हमको ऐसा क्यों कहते हो, हम तो चंद्रा उड़ेंगे अकेला में खड़ा। इसलिए कहते हैं तो चदरा ओढ़ने के पीछे तुम्हारे मन में जो पाप है उसके लिए कहते हैं क्या, हमको लोग ब्रह्मचारी समझकर भोजन को ले जाए, सब सुविधाएं हमारी जिम्मेवारी वो निभाए, तुम चदरा ओढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद कमाओ, फिर खुद घर में रोटी बनाओ और खाओ। क्या हम क्यों खाए, क्यों खाए मेरा खाए, तुमने शादी नहीं की ना, इसका मतलब है तुम्हें रोटी बनाने वाली नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है, हम बनाएंगे खाएंगे और क्या, दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे, माँ बाप कब तक मानेंगे, भाई भाभी कब तक खिलाएंगे, क्यों खिलाएंगे, मेरे कहने का मतलब है खिलाएंगे तो चार काम भी कराएंगे, अब उनके बच्चों को तो कोई काम खिलाओ नहीं पिलाओ नहीं काम नहीं करो, अरे बेमानो तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। अब समझे ना, चदरा ओढ़ने को मैं मना नहीं करता, लेकिन क्यों ओढ़ा हेतु बताओ मुझे। तो ये ऐसी जो सारे जो त्याग बोलते हैं वो त्याग भूमिका के अनुसार ही होता है, लेकिन हम वो भूमिका को लेके उसका किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। हम यदि प्रतिमा ले लें तो दूसरी प्रतिमा में जो जो चीजें वृत्त होते हैं ना उनकी लेके समाज हमसे हमारी जांच करेगा, परीक्षा करेगा, और नहीं लिया तो हम छुट्टे हैं, बस हमारा कुछ नहीं है, लाभ उसका पूरा चाहिए, समझ रहे ना, और उसका नियम एक नहीं पालना। मैं तो कहता हूं कि ये कुछ दम ही नहीं है, हमने दर्शन नहीं है, जब तक हमको ये पक्का पता है और हमने शोध सैकड़ों दफे सुना पड़ा है कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होता है, तब तक तो अष्टमूल गुण के धारण तो है ही, सम्यक दर्शन के बिना भी है ना, पहले सप्त व्यसन का त्याग है ही, शुद्ध हमारा खान पान है ही, जैसा हमारा और आप सबका शुद्ध खान पान है, इसका व्रतों से कोई संबंध नहीं है। अजित जी इतना तो हर सामान्य जैनी को चाहिए, सम्मा दर्शन जिन्हें प्राप्त करना है उनको भी इतना शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए। इसके बिना तो सम्मा दर्शन की बात ही बहुत दूर की है। वो वृत्त तो बहुत बड़ी चीज है। अब उसे ऐसा लगता है सम्मा दर्शन तो बहुत कठिन है, न मालूम होगा क्या नहीं होगा, कब होगा, वृत्त ले लेते हैं। तो वो ऐसा कह रहा है कि छठवीं क्लास तो बहुत कठिन है, मैं सातवीं में भर्ती हो जाता हूं। हमारे साथ ऐसा था, कैसा था कि हमको एमए बहुत सरल दिखता था और मैट्रिक करना कठिन दिखता था। शास्त्री न्यायतीर्थ हो गए थे, साहित्य रत्न दे दिया था, हिंदी की साहित्य की बड़ी बड़ी सारी किताबें, एमए वालों को संस्कृत एमए वालों को हमने पढ़ाया है, जब हम मैट्रिक पास भी नहीं थे तब। इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी हिंदी, अब हिंदी एमए में बैठ जाएं तो फर्स्ट क्लास पास हूं, संस्कृत एमए में बैठ जाएं तो पास हूं, लेकिन मैट्रिक में नहीं बैठ सकते। मैट्रिक में क्या तकलीफ है, मैट्रिक में एक तकलीफ है कि अनिवार्य भी अंग्रेजी भी है, गणित भी अनिवार्य है, गणित नहीं आता है और अंग्रेजी नहीं आती है, कैसे थे दसवीं नहीं। उस जमाने में ऐसा था परमात्म कि दसवीं में तो सीधे बैठ सकते थे, हमने पहली क्लास भी पास नहीं की है तो भी हम प्राइवेट परीक्षा दसवीं की दे सकते थे, आज है कि नहीं है मुझे मालूम है। हमने पहली क्लास भी पास नहीं की थी और वहां जाकर के शास्त्री हो गए थे, न्यायाधीश हो गए थे, लेकिन हमारे पास सरकारी स्कूल की पहली क्लास का भी सर्टिफिकेट नहीं था, समझे ना, तो हम बैठ नहीं सकते थे, तो हम सीधे मैट्रिक में बैठ सकते थे। तो मैट्रिक भी दो तरह से होती थी, एक ओनली इंग्लिश में और एक सारे सब्जेक्ट में। ऐसी कैसी थी तुमको समझो, क्योंकि ऐसा मानते थे वो हमें संस्कृत हिंदी और तो सब आता है, अकेली अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसलिए हम ओनली इंग्लिश से अंग्रेजी कर लें तो फिर हम आगे बीए वगैरह में बैठ सकते थे और पूरी मैट्रिक कर लें तो बैठ ही सकते थे। तो हम दो ही में बैठे, एक दफे इसमें बैठे, अंग्रेजी तो आती नहीं थी बिल्कुल जीरो भी, तो कर आगे तैयार करके बैठे तो हमारे 28 नंबर आए, है ना, नहीं ना। तो सब लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अध्यापक जो हमारे साथ पढ़ाते थे, हम संस्कृत पढ़ाते थे दसवीं ग्यारहवीं क्लास को, वो लोग और सब्जेक्ट पढ़ाते थे और दसवीं क्लास में हम बैठे थे उनके साथ अकेली ओनली इंग्लिश से। तो बोले आज हमें सबने हमें बधाई दी कि शास्त्री जी हमें मालूम था कि आप महीना भर पहले आपकी क्या हालत थी, लेकिन 28 नंबर कैसे आ गए। 28 नंबर आने पर लोगों ने बधाई दी, मिठाई खिलाई। मैंने कहा अब हम ओनली इंग्लिश से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यदि ये फुल सब्जेक्ट से बैठे होते तो और सब्जेक्ट में तो हमारे फर्स्ट क्लास नंबर आने वाले थे और इसमें 28 नंबर में ग्रेस मिल जाता था तो हम पास ही हो जाते, बस वही आती तो निकल जाते। इसलिए हम दूसरी साल पर फुल से बैठे, चलना ही ना उसे पास होगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम पात्रता एक सब्जेक्ट में तो इतने मास्टर हैं और दूसरे सब्जेक्ट में जीरो हैं, और जिसमें वे सब सब्जेक्ट अनिवार्य हैं तब वो डिग्री मिलती है, तो ब्रह्मचर्य होने की डिग्री सातवीं प्रतिमा में मिलती है, तो उसका पूरा कोर्स है, वो सारा कोर्स तुमको पास होना चाहिए। तुमने अकेला एक शादी नहीं करी तो इतने मात्र से तुम सातवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, और सातवीं प्रतिमाधारी का ब्रह्मचारियों के लिए समाज जो सम्मान की दृष्टि से देखती है और उसकी सुख सुविधाएं जुटाती है, वो सुख सुविधाएं लेने का तुम्हें अधिकार नहीं। ये मेरे मतलब कहने का ये, तो मैं सदाचार का बहुत समर्थक हूं, वो तो हमारे जीवन में होने ही चाहिए शुद्ध, लेकिन हम इतनी जो जो मुनिराजों की कोई चीज मुनिराज की, जैसे मान लीजिए दिग्विजय देश में हम भी पढ़ते थे जब श्रापकाचार, तो तो उसमें ये आता था कि अनुवृत महावृत जैसे हो जाते हैं, आता ना तत्व अनुवृताय महावृताय थे, है ना, दिग्वृत की मर्यादा के बाहर अनुवृत महावृत सरीखे हो जाते हैं। तो हमको लगता था अपन ले लो दिग्वृत, उसमें जैसा आता था, इसमें क्या दिक्कत है कि हम अभी सारे हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कल्पना भी नहीं थी अपन भी बाहर जा सकते हैं, जाने का मौका आएगा, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा भी था। और ये भी जानते थे कि चार दिन तो हमको कहीं जाना ही नहीं है, गांव के बाहर ही, तो इतना ले लो कि पूरे जिले के बाहर नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है, देशवृत्त लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुवृत्त महावृत जैसे हो जाएंगे, तो हम उसी स्थिति में रहकर दस ग्यारह बारह की स्थिति में महावृत्ति बनना चाहते थे, मतलब ऐसा अर्थ हो गया कि नहीं, मतलब उसमें लिखा है कि महावृत्त जैसे हो जाते हैं, उसकी क्या अपेक्षा है वो अलग बात है, लेकिन ये जो हमारा लोभ है इसके कारण यदि हम वो करते हैं तो वो सही नहीं है, है ना। यदि आपकी दूसरी प्रतिमा नहीं है तो आपको दिग्वृत्त देशवृत्त लेने का अधिकार नहीं है। हम सब जगह जाएं, जाने के लिए तुमको कौन बाध्य करता है, तुम कहीं मत जाओ ना, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक घोषणा पूर्वक तुम उस व्रत को नहीं लेते जो दूसरी प्रतिमा में होता है। दूसरी प्रतिमा लो तो लो, ख्याल में है ना, दूसरी प्रतिमा नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तो सब निपटा लेंगे, लेकिन दूसरी प्रतिमा लो तो वे कहते हैं कि सम्मा दर्शन के बिना वृद्ध होते नहीं, खुद क्लियर लिखा ना है शास्त्र में, अब कहीं भी उसमें गुंजाइश नहीं है। अब वो सम्मा दर्शन का कोई पता नहीं, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, हमको कोई सूद सीध नहीं दिखती है, जैसे फटाफट जाके किसी से महाराज से प्रतिज्ञा ले लेते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके ले लेते हैं, भगवान के सामने ले लेते हैं प्रतिज्ञा, इतना आसान है ना व्रत लेना, और सम्मा दर्शन होना इतना आसान नहीं दिखता। तो जिसको पांचवी क्लास सरल दिखती है और चौथी क्लास कठिन दिखती है, तो वो वैसे ही होगा हम जैसा कि हमें एन सरल दिखता है और मैट्रिक कठिन दिखती है, वैसे ही हो गया ना, हमको पूरे लेवल से वो चीज बढ़नी चाहिए। अब हर एक आदमी में ऐसा सोचता है कि जरा बड़े मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है। मैं दो एक बात मैं बिल्कुल बताता हूँ, आज से 60 साल पुरानी बात है। एक भाई मेरे पास आए, वो बोले कि मेरे तीन प्रतिमाएं हैं, उनका नाम दीपचंद जी था, दीपचंद जी के भाई थे बालचंद, क्यों बालचंद नाम था, कि मेरे पास तीन प्रतिमाएं हैं, अब मैं चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूं। तुमने कहा ले लो, एक दिक्कत है क्या, कि मैं पुरुष दो बास नहीं कर सकता, पहले भी कहा है क्या अंदर है, मैं पुरुष दो बास समझते हो ना, सप्तमी का एक आसन, फिर अष्टमी का उपवास, फिर नौमी का फिर एक आसन, मैंने 48 घंटे भोजन नहीं करना, तो वो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे एसिडिटी बनती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है, तो बस इतनी सी मेरे पास तकलीफ है, तो आप मुझे ये सुविधा दे दो तो मैं चौथी प्रतिमा ले लू। तो मैंने कहा भाई आपको किसने कहा कि मेरे पास ये सुविधा देने का अधिकार है, मेरे पास क्या, मैं तो कोई वृत्ति हूं नहीं, न मैं किसी को वृत्त दे सकता हूं, मैं सुविधा भगवान ने मुझे एजेंट बना दिया हो कि मैं किसी को सुविधा दे दूं, ऐसा है नहीं, तो मैं क्या क्या सुविधा दे दूं, कैसे दे दूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको चौथी प्रतिमा काय को चाहिए, जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो मैंने चौथी प्रतिमा किसे कहते हैं बताओ, मुझे जानते हो, हाँ जो हर अश्विन चतुर्दशी का 48 घंटे का उपवास करें वो चौथी प्रतिमा वाला है, तो तुम्हें जानते हो ना, अब वो ही तुम कर नहीं सकते, तो तुम चौथी प्रतिमा के काबिल नहीं हो, ये सिद्ध हो गया ना, मेरा मतलब समझे ना। अरे नहीं नहीं, हम तो है वहां काबिल है, और हम तो सचित त्याग पांचवी प्रतिमा भी ले लेंगे, सचित त्याग कर लेंगे, वैसे ही हमें जी को खाते ही नहीं है, प्राप्ति भजन के बाद हमारा त्याग ही है, हम छठवी ले लेंगे, हम घर में कोई है ही नहीं, सातवीं ले लेंगे, अब इतनी अड़ रही, सिर्फ चौथी में लेने में दिक्कत हो रही, इतनी सी सुविधा आप दे दो कि दिला दो कहीं से तो हम आगे बढ़ जाए, अभी आए समझे ना। तो मैंने बहुत समझाया, बहुत भोले भाले जीव थे, बड़ी उम्र के थे, मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के, कि दादाजी आपको चौथी प्रतिमा ले लोगे तो आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपका बच्चा कॉलेज में भर्ती हो जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आप दुकान अच्छी चलने लगेगी, हमें क्या लाभ हो जाएगा, कौन सा काम आपका अटक रहा है कि आप चौथी प्रतिमा नहीं लें। तो उनने बताया कि मैं सातवीं ले सकता हूँ, मैं सातवीं प्रतिमा नहीं ले पा रहा हूँ, इसके पीछे ये अटक रहा। बोलो क्या किया, क्या करता हूं, क्या करता, ये सन 56 की बात है, 56 समझते हो, 56 कितना साल हो गए, गिनो 59 साल हो गए सुनो, और वो उनके बड़े भाई मंदिर में रोजाना प्रवचन करते थे, उनका नाम था दीपचंद जी, पंडित दीपचंद जी, और वो उनके छोटे भाई थे, हम लोग भी प्रवचन करते थे, रहते थे, मतलब वो प्रतिष्ठित परिवार के थे, बहुत अच्छे थे, नाम लेके बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें मैं ये नहीं समझा पाया कि ये सही नहीं है, तो अब संबंधन को तो कौन पूछता है, मतलब इतनी सी एक एक बात कहीं अटकती दिखती है ना, और उनकी समझ में आ गई कि इसमें ये बात में पुल नहीं चलेगी, तो बस वो नहीं देना चाहते, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमको अपनी भूमिका को पूरी तरह समझना चाहिए और उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए, तो जो हमको लाभ होना है वो गारंटी से वो लाभ हमें प्राप्त होगा, ये मत समझो। एक ये भी एक और टोडरमल जी के शब्दों से ही हमने पकड़ ली है बात, कि प्रतिज्ञा नहीं लो तो उसका पाप लगता रहता है, प्रतिज्ञा लो तो पाप नहीं लगता है, जैसे आलू हम नहीं खाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लो तो आलू खाने का पाप हमें निरंतर लगता रहता है, और हमने कह दिया कि नहीं खाएंगे तो पाप बंद हो जाता है, हमने कह दी 2 महीने को नहीं खाएंगे तो 2 महीना पाप बंद हो जाएगा। अब ये पाप की फिलोसफी कौन से अनुयोग में है, आलू खाने का पाप अलग होता है कोई, शकरकंदी का पाप अलग होता है, दाल साग का अलग होता है, मूली गाजर का अलग होता है, क्यों ऐसा है, अब हम एक एक चीज समझते हैं, कफरे कह दीजिए तो हम खाते ही नहीं है, तो छोड़ दो, ये तो हम खाते ही नहीं है, ये तो हम खाते ही नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है। तो मैं सन 57 में अशोकनगर में गया था, उसके पहले वहां पर एक पंडित जी थे, उनने सब लोगों को की कापियां बनवा रखी थी, और कापियों में सब ये लिखा था कि मैंने लौकी इस तारीख तक के लिए छोड़ी, भिंडी इस तारीख तक के लिए छोड़ी, ये इस तारीख के लिए, सबकी तारीखें दी हुई थी, और शास्त्र में भी आता है ना, बरसात में ये नहीं खाना चाहिए, फलाने में ये नहीं खाना चाहिए, आद्रा लग जाए तो आम नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता है ना, तो ऐसा उनने सब को बना रखी थी, और वो देख मैंने 3 साल के लिए ये छोड़ा, 4 साल के लिए ये छोड़ा, 5 साल के लिए ये छोड़ा, ऐसा बना रखी थी कापी। मैं गया तो सबकी कापियां थी और सब लोग देखते थे कि अभी मेरी कौन कौन सी की म्याद आ रही है, जैसे तो व्यापारी लोग देखते हैं चिमचिम की डेट आ गई, मुझे पैसा उगाना चाहिए, मुझे दावा करना चाहिए, दावा नहीं कर पाऊंगा तो फिर भी पैसे मारे जाएंगे, ऐसे ही सब किया करते थे। मैंने उन्हें बहुत समझा, महीनों लगातार उसके विरुद्ध प्रवचन किए, तब मुश्किल से वे कापियां फड़वा पाए। आगे तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, अरे अच्छा है, दे लोग प्रतिज्ञा लेते थे, लेकिन सबके पीछे ये था कि मुफ्त का पाप छोड़ दो, मुफ्त का काय बोले। अब इसके बाद आम आते ही नहीं है, तो आम खाने का पाप लगता रहेगा। अब मैं समझाऊं कि ऐसा पाप नहीं लगता रहेगा, जब तुम्हें खाने का भाव होगा और जब तुम खाओगे तभी पाप लगेगा। तो ये जो झूठा लोभ हमारे दिमाग में घुस गया, उसकी वजह से ये प्रवृत्ति पनप गई कि ये आलू खाने का पाप होता है, फिर मैंने नहीं छोड़े तो मेरे पाप हो लगते रहे, लगता ही रहेगा। हम नहीं खाएंगे तो जबरदस्ती कैसे लगता रहेगा? तो बहुत तर्क है, बहुत अच्छा, कि तुमको खाने का राग है इसलिए तुम छोड़ नहीं पा रहे। यदि तुमको सचमुच खाना ही नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते? तो हम कहते हैं ये कमजोरी है, तू कमजोरी जन, जितना पाप होता उतना लगेगा, वो खाने की तीव्रता वाला जितना पाप होता वो कैसे लगेगा? अब ऐसा है, हम मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे तो मुनि दीक्षा नहीं लेने का पाप लगता रहेगा, छुल्लक नहीं बन पा रहे तो छुल्लक नहीं बनने का पाप लगता रहेगा, ऐसा कोई पाप होता है? तुमने कितना करुणा योग पढ़ लिया, अभी उसमें कहीं ऐसा आया था इस तरह का कोई ऐसा पाप होता है? लेकिन वो हमारा फैला रखा है, इन माताओं बहनों में बहुत गहराई से जमा हुआ है ऐसा मामला, ऐसा हर चीज का मुफ्त का पाप क्यों बांधे? तो ये सब मुफ्त का, लेकिन मुफ्त का पाप छोड़ती है सब, मतलब का कोई नहीं छोड़ती, जो चीज खाना पीना भोगना है उसे भोगते हैं, समझे ना, और जिनको नहीं खाना ही नहीं है उसको छोड़ के अपने को धर्मात्मा बनाते हैं। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे हैं ना। जब हम खुद जान रहे हैं कि संबंध दर्शन के बिना व्रत नहीं होता है, तो फिर व्रत लेकर व्रत देकर हम किसको धोखा दे रहे हैं? कि वो बहुत कठिन है तो कोशिश करो ना, उन व्रत से कठिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली चौथी क्लास में होता है, वो पांचवी में होते हैं अनुवृत्त, वो महावीर छठवी में होते हैं, गुण स्थान में होते हैं ना, तो वो इससे कठिन नहीं हो सकता। इसलिए या तो हम सम्मा दर्शन का जो कोर्स है उसे सही नहीं समझ रहे, और या व्रत के कोर्स को हम सही नहीं समझ रहे। यदि हमें सही दोनों की बातें ख्याल में आ जाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें सम्यक दर्शन तो लगे कठिन और सम्यक चारित्र लगे सरल? यानी इससे क्या सिद्ध हुआ कि इन दोनों का सही स्वरूप हमारी समझ में नहीं आया। तो सही स्वरूप हमें समझने की कोशिश करना चाहिए ना। अभी यहां नहीं समझोगे तो कहां समझोगे? कहां मिलेगा आपको अवसर? यहां तो आप इसी काम के लिए बैठे हैं ना, है? 5 साल आपने इसी काम के लिए दिए ना, प्रतिज्ञा पूर्वक माँ बाप से आगे करके आए हैं कि हम जैन धर्म की गहराई से अध्ययन करेंगे। तो अब जैन धर्म, ये जैन ही धर्म तो है, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का ये जैन धर्म है ना, तो इसको हम गहराई से समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? अभी यहां जो बात चल रही थी मालूम क्या है, ये भूमिका में क्या है कि सिद्धों के भी सुखी हैं। तुम ये मत समझना कि उनके शरीर नहीं है तो वे सुखी नहीं होंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये बस रहा है कि शरीर ही नहीं है तो सुखी काय के, कभी निरोग है उनके तो शरीर ही नहीं है तो काय के निरोग, तो वो कहते हैं कि उनके शरीर सुख नहीं है, शरीर नहीं है लेकिन वे सुखी हैं। और यदि उन्हें शरीर के बिना सुखी नहीं मानेंगे तो फिर हम जो शरीर वाले हैं उनको शरीर के कारण सुख है ऐसा मानना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि शरीरी जीव हैं, शरीर वाले जो जीव हैं वे भी जो सुखी हैं लौकिक सुखी वो शरीर के कारण नहीं हैं, अपने स्वभाव से हैं। और देव भी जो सुखी हैं वे शरीर के कारण नहीं हैं, अपने स्वभाव के कारण हैं। ये दोनों छंद फिर पढ़ो, इतना मैंने बोला है ना उसके संदर्भ में इसका अर्थ समझने की कोशिश करना, बड़ा पढ़ो।
इंद्रिय विषय को प्राप्त करिए जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं देह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप।
स्वर्ग में भी, अब स्वर्ग में तो शरीर बहुत निरोग होता है ना और सब तरह से अनुकूल होता है, तो यदि स्वर्ग में भी ये शरीर जीव को सुख नहीं देता, वहां जो सुख दुख होता है वो भी उसके स्वयं स्वभाव से ही होता है। देखो स्पर्शनादिक इंद्रियां जिनका आश्रय लेती हैं ऐसे इष्ट विषयों को पाकर अपने स्वभाव से ही प्रणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही इंद्रिय सुख रूप होता है, देह सुख रूप नहीं होती। यह बात सुनिश्चित ही है कि स्वर्ग में भी शरीर शरीरी माने शरीरधारी जीव को सुख नहीं देता, अपितु आत्मा विषयों के बस सुख रूप अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। तत्व प्रदीप का टीका में इसका अर्थ इस प्रकार कहा है, वस्तुतः इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो शरीर वाले हैं उन्हें शरीर की वजह से सुख दुख हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। एक कहने का क्या प्रयोजन है कि तुम सुखी होने के लिए इस शरीर की सेवा में लग रहे, कि शरीर ठीक रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, तो शरीर से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि तब भी मानो उन्माद जनक मदिरा का पान किया हो तो ऐसी प्रबल मोह बस बरतने वाली यह विषय हमें इष्ट है, इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से इसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसे निश्चय कारण रूप अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव से प्रणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव सुखी होता है। शरीर तो अचेतन होने से सुख का निश्चय कारण नहीं है, इसलिए वह सुखरूप नहीं होता। जब शरीर सुखी नहीं होता तो शरीर के कारण हम सुखी क्यों होंगे, एक तर्क उनका ये है ना। यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैक्रियक ही क्यों ना हो तथापि वह सुख नहीं दे सकता, अतः यह आत्मा इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के बस होकर स्वयं ही सुख अथवा दुख रूप होता है। माने ये बताना उनका उद्देश्य है, यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते क्योंकि उनके शरीर नहीं है। शरीर न होने पर भी सिद्ध भगवान सुखी हैं, इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुख का कारण नहीं है। अब ये हिंदी में अपन ने लिखा क्यों, क्योंकि उत्थान का मैंने ये लिखा था कि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है इसलिए वे दुखी होंगे ऐसा नहीं है। फिर पूरी गाथा में और टीका में उसकी चर्चा ही नहीं करी कहीं, तो अपन ने ये निष्कर्ष करके चर्चा की है। आचार्य जयसेन को तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 65वीं गाथा की टीका की उत्थानिका में ही लिखते हैं कि सिद्धों के शरीर के अभाव में भी सुख है, यह बताने के लिए ही शरीर सुख का कारण नहीं है यह व्यक्त करते हैं। तो सिद्धों को शरीर सुखी नहीं, सुखी हैं वो और शरीर नहीं है उनके, ये बताने के लिए हमने ये बात बताई है। टीका के अंत में गाथा के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए भी लिखते हैं, संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख है उसका भी उपादान कारण जीव ही है, शरीर नहीं, और सिद्धों में जो अतीन्द्रिय सुख है उसका उपादान भी आत्मा ही है। अब कहेगा जी लौकिक सुख का भी आत्मा और लौकिक दुख का भी आत्मा और अतीन्द्रिय सुख का भी कारण आत्मा, ये आप ये बात कैसी कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि इनका उपादान कारण आत्मा है, ये बात हमें उस सिद्ध भगवान का भी अपने उपादान के कारण से अनंत सुखी है और जिस संसार का सुख दुख भी जो आपको दिखाई देता है वो भी आपकी उपादान का योग्यता के कारण है, ये समझना चाहिए।